जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी। जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी बोलो बोलो हरिबो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जयो राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम जय श्री राधा माधव की श्रीमद भागवतम की श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय तो आज का जो वर्सेस है ये कैंटो 4 है चैप्टर 24 है और वर्सेस है 9 है वर्सेस 9 है इधर मुझे मिल गया तो हिंदी तो उतना ठीक है बहुत अच्छा सब रख लेते हैं ना इंग्लिश हिंदी मिला करते हैं तो ये प्रसंग चल रहा है श्रीमद् भागवतम में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से बात कर रहे हैं ये प्रसंग है एक्चुअली जो प्रसंग है ये प्रसंग पूरा पितु महाराज के प्रसंग है उसके ऊपर मैत्रेय ऋषि विदुर जी को बता रहे हैं तो आप लोग तो बहुत पूरा ऑलमोस्ट खत्म होने जा रहा है ये जो चैप्टर है, तो आज का चैप्टर जो है टैक्सेस जो है वो 9 है। बर्हिषात् सुमाहा भागो हविर्धन्यः प्रजापतिः क्रिया कांडेषु निशान्तो योगेषु च कुरुध्वः। बहिषा सुमा बाघो हविर्धनी प्रजापति क्रियाकांडेषु निशान्तो युगेषु च कुरुध्वः। बहिषात् सुमा बाघो हविधनी प्रजापति क्रियाकांडेषु निशान्तो युगेषु च कुरुध्वः। बहिषात् सुमा बाहो हविधनी प्रजापति क्रियाकांडेषु निशान्तो युगेषु च कुरुध्वः। बहिर्सात द नेम ऑफ बहिर्सात सुमहाबाहो वेरी फॉर्चुनेट हाविर्धनी ऑफ द नेम हाविर्धनी प्रजापति द पोस्ट ऑफ प्रजापति क्रियाकंदेशु इन द मैटर ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटीज निशांतो बीइंग मर्ज इन जुगेशु इन मैस्टिक योगा प्रैक्टिस मैस्टिक योगा प्रैक्टिस च ऑल्सो गुरु वह बेस्ट ऑफ द कुरुज जिसको वह थे बेस्ट ऑफ द कुरुज मतलब विदुर को कह रहे हैं. अभी प्रभुपाद के द्वारा ट्रांसलेशन है. द ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यू माय डियर विदुरा हाविर्धनी वेरी पावरफुल सन नेम बरहिसत वॉज वेरी एक्सपर्ट इन परफॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ फ्रूटिक सैक्रिफिसेस एंड ही वॉज ऑल्सो एक्सपर्ट इन द प्रैक्टिस ऑफ मेस्टिक योगा बाई हिज ग्रेट क्वालिफिकेशन ही बिकम नोन एज प्रजापति. रिपीट करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं. रिपीट करें आप लोग जैसे ऐसे प्रभुपद तो रिपीट कराते थे. रिपीट करा. थैंक यू. सो द ग्रेट सेज मैत्रेय कंटिन्यू माय डियर विदुर हाविर्धनी वेरी पावरफुल सन नेम बरहिसत was very expert in performing various kind of fruitive sacrifices and he was also expert in the practice of mystic yoga. By his great qualifications he became known as Prajapati. Now the purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. In the beginning of this creation, there were not many living entities, and consequently, the very powerful living entity or demigod were appointed as Prajapatis in order to beget children and increase the population. There are many Prajapatis. Brahma, Daksha and Manu are sometimes known as Prajapati. And Bharahisat, the son of Havirdhana, become one of them. Prabhupada ka parpad itna hi hai. Keh rahe hai ki, jo shuruvaad mein itna sab population nahi the, बहुत कम थी पॉपुलेशन था. तो पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे अच्छे अच्छे डेमिगॉड जो देवता था उनको भी अपॉइंट किया जाते थे. उन लोगों को प्रजापति बोला जाता था. उसमें उनके नाम दिए गया है. ब्रह्मा है, दक्षा है और मोनु है. उसका अंदर जो हरिधन का जो पुत्र है बरहिसत उसको भी एक प्रजापति कहा जाता है. इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने ऐसे तो जो हाविर्धन था उनके 6 पुत्र हुए. 6 पुत्र के अंदर जो हाविर्धन था ये बहुत प्रसिद्ध हुए. उन्होंने इतना यज्ञ किया वन आफ्टर अनदर यज्ञ करते करते इतना प्रसिद्ध हो गया कि पूरे संसार में घास वो जो कुशाग्रास होते हैं ना उन्होंने बिछा दिए बिल्कुल कारपेट जैसे. ऐसे तो उस जमाने में जहां की बात हो रही है उस टाइम का यज्ञ में और कलिजी का यज्ञ में बहुत अंतर है. और इधर जो मत्स्य ऋषि विदुर जी से बात कह रहे हैं, देखिए विदुर जी तो ऐसे कोई साधारण व्यक्ति तो था नहीं, ये साक्षात धर्मराज जमराज थे। किसी ऋषि का श्राप में, मंटप ऋषि का श्राप में इस धरती में आ गए थे, शूद्र घर में जन्म ले लिया। मगर देखिए मैत्रेय ऋषि विदुर जी को कह रहे हैं कि कुरुश्रेष्ठ, कुरुश्रेष्ठ कह रहे हैं। जगत में आजकल हम लोग किसी को बड़ा उपाधि देते हैं तो कुछ पाने के लिए देते हैं, है ना। जैसे कोई हमारे हरे कृष्ण में मंदिर में प्रेसिडेंट साहब के पास आए तो, या गुरु महाराज के पास आए तो बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं कि स्वामी जी आप कितने अच्छे, इतना प्रचार आप कर रहे हो, आप कितने लोगों को भक्त कर रहे हो, भगवान कृष्ण का संदेश दे रहे हो, बड़ा ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ, ग्लोरीफाई के पीछे बाद में कुछ कारण होता है, उनको कुछ प्राप्त करना है। पर यहाँ पे मैत्रेय ऋषि कोई प्राप्त करने के लिए उनको कुरुश्रेष्ठ नहीं कह रहे, और मैत्रेय ऋषि ऐसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है कि आके विदुर जी को, हाँ जी विदुर जी आप कुरुश्रेष्ठ हो, क्योंकि विदुर जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। हाँ, ये मैत्रेय ऋषि को मालूम था, और मैत्रेय ऋषि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। कि जो मैत्रेय ऋषि थे वो ऐसे ऋषि थे, जबकि देखिए जब भगवान श्री कृष्ण ये संसार से प्रत्यागमन कर रहे थे अपना धर्म में, अपनी वैकुंठ धाम में, लोगोलोक धाम में जा रहे थे, उसी टाइम मैत्रेय ऋषि वहां थे। हाँ, और उनके साथ उद्धव जी भी थे। और देखिए बोलते ना, भगवान के हृदय में भक्त बैठे रहता है और भक्त के हृदय में भगवान भी विराजमान होते हैं। तो जब विदुर जी, जब कुरुक्षेत्र के युद्ध के पहले ही विदुर जी हस्तिनापुर छोड़ के चला गया था, उनको कुछ मालूम ही नहीं क्या हुआ हस्तिनापुर में, कौन बचे, कौन मरे, कौन राजा हुआ, कौन नहीं हुआ। हालांकि उनको तो मालूम था कि धर्मराज युधिष्ठिर ही राजा होंगे, फिर भी उनको ये पूरे डिटेल खबर कुछ मालूम नहीं थे, क्योंकि उन्होंने तीर्थ भवन में चला गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में दो ही व्यक्ति तीर्थ भवन में गए थे, एक बलराम जी और एक विदुर जी। ये दो ही व्यक्ति तीर्थ, जब बलराम जी किसी पार्ट नहीं ले और विदुर जी तो अपमानित होकर चला गए थे। तो मगर भगवान कृष्ण विदुर जी को कभी भूले नहीं, क्योंकि विदुर जो था वो परम भक्त थे भगवान के। देखिए इतने परम भक्त थे कि कभी भी किसी भी समय जब भी वो हस्तिनापुर आता था तो विदाउट एनी इन्विटेशन विदुर जी के घर में चल पहुंच जाता था। भाले पांडव उनके परम मित्र थे, पांडव उनके छत्र छाया में थे, पर वो पांडव का घर में नहीं जाता था जब तक युधिष्ठिर महाराज नहीं बोलाते, या अर्जुन जाके बोलते थे चलिए आप चलिए हमारे घर में चलिए। पर विदुर का घर में विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन वो पहुंच जाते थे। तो विदुर जी को इतना वो प्यार करता था, इतने उनके अंदर प्रेम भाव था विदुर के प्रति, कि वो गाना भी है ना कि विदुर घर सूखा साग खायो। हाँ, जो वो दुर्योधन जो है बड़ा अच्छा अच्छा बनाया, चलो सोचा चलो मैं कृष्ण को पकड़ लूंगा खिखाला, अरे वो तो गौ चराने वाला है, इसके पास क्या है, देखो क्या क्या बुद्धि होता है। हा? बोलते गौ चराने उसके पास क्या है, हम उसके ऐसा खिलाएंगे कि हमारा खिलाने से वो भूल जाएगा। तो भगवान अंतर्जामी है, हृदय सन्निविष्ट तो भगवान हर व्यक्ति के हृदय में बैठे हुए हैं, उनको मालूम है कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या नहीं सोच रहा है। तो भगवान आए, सीधा विदुर जी के घर में चला गए और वहां पे जाके साग खा लिए। तो इतना प्रेम प्रीति विदुर के थे। तो जब विदुर जी, जब इस भगवान जब इस संसार छोड़ रहे थे, अपना परम धाम में चल रहे थे, तो उस टाइम भी विदुर के विषय में उनको ध्यान आया। ये नहीं कि उन्होंने उसी क्या होता है, जिससे जिसका अटैचमेंट होते हैं, लोग बोलते हैं ना कि शरीर सोने का पहले भी उसको ही याद करता है। तो भगवान अपने लीला खत्म समाप्त करने के पश्चात अब जा रहे हैं, तो विदुर के बारे में सोच रहे हैं। देखिए कितना इंपॉर्टेंट बात है, मतलब भगवान विदुर जी को कितना चाहते थे। तो उस टाइम मैत्र ऋषि और ये उद्धव को कहा कि जब विदुर से आपका आपका मुलाकात होंगे तो विदुर को हमारे बारे में कहना, और बड़ा सीक्रेट बात कहकर उन्होंने अपना अंतर्धान धाम पे चला गया। तो वही मैत्रेय जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और वही मैत्रेय जी विदुर को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि वो विदुर जी जो है कुरुकुल के एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे, इसी वजह से कह रहे हैं, क्योंकि परम भगवान के परम भक्त थे। और विदुर चरित्र तो ऐसे है कि श्रीमद् भागवत में इसके वर्णन इतना अच्छा से किया गया, सबसे तो बेस्ट आप देखोगे जो युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में। जब विदुर जी आए घूम के धर्मस्थान तीर्थ भ्रमण करके आए, तो यमुना तट पे उद्धव जी से मुलाकात हुआ। तो उद्धव जी बड़ा, जब मुलाकात हुए तो उद्धव जी उम्र से छोटे थे विदुर जी से, तो विदुर जी बड़ा अच्छा से उनको सम्मान किए, प्रणाम किए, सब पूछने लगे, भाई क्या हुआ युद्ध में, क्या हुआ, भगवान कृष्ण का फैमिली कैसे है। तब तो भगवान कृष्ण तो चला गए थे अपना धाम में, पूरा कुरु खत्म हो चुके थे और युधिष्ठिर महाराज राजा बन चुके थे। तो जब सारी बात उद्धव जी ने विदुर जी को बताया कि ऐसे ऐसे हुआ, तो विदुर जी को बड़ा कष्ट हुए, बड़े रोए भगवान के विरह में, और द सेम टाइम उनको बड़ा गुस्सा भी आए, इतना गुस्सा आया किसके ऊपर, धृतराष्ट्र के ऊपर। उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र कैसे है, देखिए। तो उन्होंने बोला कि धृतराष्ट्र भीम के वहां रहता है, और देखिए पांडव लोग भगवान के भक्त होने का नाते इतने अच्छे स्वभाव के थे, धृतराष्ट्र ने इतना कुकृति किए इनके पीछे, फिर भी पांडव धृतराष्ट्र को जैसे अपने पिता से भी अधिक सम्मान से उनको देखभाल करता था, कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ होने दिया कि उनके संतान चला गए, उनके संतान नहीं है, बड़ा कदर से रखते थे। पर विदुर जी आए, आके धृतराष्ट्र को मिला और एकांत में मिला, और उस टाइम उन्होंने धृतराष्ट्र के कहने लगे कि,
क्या कहने लगे,
कि महाराज काल चक्र आपके सर पे, हमारा सबके सर पे घूम रहा है, जो काल चक्र है घूम रहे हैं, और अभी भी आप उस काल चक्र को पहचान नहीं पाए। ये काल चक्र क्या है, वो काल चक्र ऐसा है कि व्यक्ति जो जो शरीर को छोड़ने के लिए जो आत्मा इतना इतने प्रकट करके शरीर को पकड़ रखते हैं, पर काल चक्र उसको छीन के निकाल देते हैं। तो धन दौलत पैसे खरी पुत्र परिजन ही तो कोई बात की बात है, इस जो आत्मा है यहां ये काल चक्र के चक्कर में आकर ऐसे खींच लेते हैं जो जाना नहीं चाहता है, उसको खींच के निकाल के फेंक देते हैं। बोलते काल चक्र हमारा सबके सर में घूम रहे हैं और आपको खबर नहीं है, आप जीर्ण हो चुके हैं, आपके शरीर एकदम जीर्ण हो चुके हैं, आप अभी भी आपको क्या प्रत्याशा है। प्रभुपाद को उदाहरण देते थे ना कि वो बकरा जो है स्लॉटर हाउस में जा रहे हैं और फिर भी घास खा रहे हैं, उसको मालूम ही नहीं है कि हमको थोड़ी देर में हमारा गर्दन कर जाएंगे। मेरा जीवन में एक प्रत्यक्ष ये प्रमाण देखा, मैं गयाना में गया तो उनका जू देखने गया हमने, तो गयाना वेस्ट इंडीज में होते हैं, तो वहां का जू बड़ा आश्चर्य है, जू मतलब कुछ नहीं है जी, हमारा मंदिर का कॉम्प्लेक्स जितना है उतना है उनका जू, मगर उसमें एक बड़ा हमको बड़ा आश्चर्यजनक चकित जो प्रभुपाद का मैसेज है वो भागवतों में पढ़ा था, पर मैं अपना आंखों से अपना कानों से अपना मतलब साक्षात प्रमाण देख के आया और मेरा एकदम शरीर रुएटे खड़ा हो गए। काल चक्र किसको कहते हैं, और जू में कुछ नहीं था, कुछ चिड़िया था, कुछ सांप थे और बकरी थी, और कुछ था ही नहीं।
मगर उसमें ये ऐसा एक बड़ा विचित्र हमने देखा, एक बहुत बड़ा अजगर सांप था, अजगर तो केज में रखा हुआ है और अजगर सो रहा है और अजगर के सांप के बगल में एक चिकन मुर्गा रखा हुआ है और मुर्गा ऐसे ऐसे खा रहा है, पंखा को ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है। तो मैं किसी को पूछा वहां जो काम करने वाला है ना, मैंने कहा ये कौन सी परिस्थिति है भाई, अजगर इधर है और उसके साथ एक मुर्गा रख दिया। तो काम करने वाला बोलता है कि जब अजगर का भूख लगेगा मुर्गा को पकड़ के खा जाएगा, क्योंकि जो अजगर होते हैं सांप जो होते हैं ना वो मुर्दा चीज नहीं खाते, वो एकदम ताजे ताजे चीज खाते हैं। तो मुझे प्रभुपाद के पूरे जो उनका जो पारपोट था ना आंखों में देख रहा हूं, मैंने कहा देखो कितने एकदम ऐसा था, ये है अजगर और ये है चिकन मुर्गा। हाँ, कभी कभी मुर्गा पंखा मार के इधर से जाता है अजगर के ऊपर से, कुछ नहीं बोलता, पर उस मुर्गा को मालूम नहीं है कि यही अजगर एनी मोमेंट ऐसा मारेगा, चपट लेंगे फिनिश एनी मोमेंट। मतलब देखो मुर्गा सोचा मैं कितना आसानी से खा रहा हूं, घूम रहा हूं, पंखी को ऐसा कर रहा हूं, हाँ? पर उसको तो मैं सब लोग आके देख रहा है, मुर्गा को देख रहा है, वो सांप को देख रहा है और सब हंस रहा है जा रहा है, पर मैं वहां खड़ा होके पूरा प्रभुपाद जी का पारपोट मेरा दिमाग में घुस गए। कभी क्या होता है पता है कि हम लोग प्रभुपाद जो कुछ बोलते हैं ना ये महसूस नहीं होता, बिकॉज वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, इतना सस्ता ले लेता है, क्योंकि प्रभुपाद जी सारी भागवतों को ना हमको पिला दिया, ऐसे पानी घुल के पिला दिया उन, इसीलिए हम लोग को लगता है अरे ये तो बहुत इजी बात है। इतना इजी नहीं है, मतलब अनुभव करना चाहिए उसको, जब साक्षात देखोगे ना तो पता लगेगा। तो मैं देख के मेरा रुवाटे खड़ा हो गया, मैंने कहा देखो ये मुर्गा इतना हिल रहा है खिल रहा है, मगर कभी भी आज हम वहां पर रहे, देन आई कनेक्टेड माई सेल्फ, मैंने कहा मेरा भी काल चक्र सर पे बैठे हुआ है और मुझे मालूम ही नहीं, जैसे मुर्गा को मालूम नहीं कि एनी मोमेंट दैट्स इट फिनिश। तो हमारा हर व्यक्ति का काल चक्र सर में ऐसा बैठा हुआ है, किसी को मालूम भी नहीं है, एनी मोमेंट दैट्स इट बैंग। तो वही विदुर जी को, विदुर जी हाँ युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं कि महाराज हाँ, आप क्या चाहते हो, हुँ? क्या चाहते हो? आपने जिस पांडव लोगों को जिस पांडव लोगों ने आपका 100 बच्चे को हत्या कर दी, मार दी युद्ध में, जिस पांडव को आपने 20 जहर दिया, उनकी बीवी को भरी सभा में नंगा करने की कोशिश किया, हाँ? जिन पे आग लगा के जलाने की कोशिश किया, जिनको आप सुई की बराबर थोड़ा सा जमीन देने के इनकार कर दिया, उसी पांडव का घर में आराम से रहकर आप ऐश कर रहे हो, ये तो कुत्ते के जीवन भी इससे बहुत बेकार है, ऐसे बोला। और आपको मालूम नहीं है कि काल चक्र, आपको क्या, आप अभी क्या चाहते हो, आपका जीवन में क्या संभव है, क्या प्राप्त करोगे, काल चक्र आपका सर में बैठे हुआ है जैसे मुर्गा और उधर सांप बैठे हुए हैं। तो इसी प्रकार विदुर जी की बड़ा वार्तालाप हुई और युधिष्ठिर महाराज को ऐसे बोला, उसी दिन से युधिष्ठिर महाराज चुपचाप अपना धर्मपुत्री को लेकर उत्तर तरफ चला गए। सॉरी सॉरी सर, मेरा थोड़ा सा धृतराष्ट्र और विदुर जी भी उनके साथ चला गए, विदुर जी भी धृतराष्ट्र के साथ चला गया और विदुर जी को बड़ा खुश हुआ कि चाहे भले अंत में कि उन्होंने उनके बात रख ली। तो मेरा कहने का मतलब है कि जो काल चक्र है, तो ये काल चक्र से बचने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। मैत्रेय ऋषि विदुर जी को जो उपदेश दिए हैं उसमें से एक उपदेश ये भी है। और दूसरी बात ये है कि देखिए आश्चर्य की बात ये है कि आजकल जो हम लोग प्रजनी बोलते हैं ना, जैसे पहले जमाने में राजा लोग 100-100 शादियां करते थे, 1000-1000 बच्चे होते थे, अभी भी कितने कितने बच्चे हो रहे हैं, मगर किस कारण से हो रहे हैं? पहले जमाने में जब ह्यूमन रेस आता था, जो बड़ी साथ जो यज्ञ किए, हाँ, उसके कारण क्या कि धन भन में भर जाए लोग। अगर व्यक्ति के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, भगवान के प्रति विश्वास, भगवान को जानने की इच्छा ना रहे और अपना आत्मा का शुद्धिकरण ना करे, कालचक्र के बचने के लिए कोशिश ना करे, तो ऐसे जनता से मतलब क्या, कोई मतलब है? अब देखो मुंबई शहर में घुस नहीं सकते, ट्रेन में खड़ा हो जाओ जाने के लिए सांताक्रूज में, आपको ट्रेन के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर खड़ा रहो एक धक्का के अंदर आप अंदर चला जाते हो, जब आने की जरूरत है वहां खड़ा रहो एक धक्का से बाहर, आपको पता ही नहीं लगा कि आपको पाव चला कि नहीं चला। मगर ये जनता से पूछिए कि कालचक्र से बचने की कोई कोशिश कर रहा है? अभी मैं आपको प्रत्यक्ष दूसरा प्रमाण देता हूं। अभी अभी हम राम जन्मभूमि घूम के आए, तो हम रामनवमी में गए थे, तो हम सरजू नदी में नहाए, पहले इतने गर्मी थे और लाखों लाखों लोग आए हुए हैं राम जन्मभूमि राम जी के दर्शन करने के लिए। तो हमने क्या करताल मृदंग उठाए, हमारे साथ चार पांच भक्त थे, कीर्तन करते करते चला, हमने कहा कि लाइन में खड़ा होंगे तो सारी जिंदगी लग जाएगा, तो चलो साधु का फिर भी इस देश में थोड़ा सा कृपा है लोगों का, साधु को देखकर कीर्तन देखकर लोग छोड़ दिए, जाइए महाराज जाइए जाइए। तो जाते जाते सीधा हम लोग दरवाजे में पहुंच गए, तो जब दरवाजे में पहुंच गए पुलिस लोग भी हमको छोड़ दिए, फिर बाद में महाराज इधर आइए इधर सामान रखिए पहले, तो सामान में हम लोगों का मृदंग करताल था, बोलते जमा कीजिए, चलो हम जमा कर देते। अब जब जमा करने गए वहां पे हजारों लोग बैठे हैं अपने टेलीफोन अपने ये वो जमा करने के लिए, तो उस वहां पे क्या हुआ, बड़ा आश्चर्य की बात है, सुनिए, हमारा इस संसार में जनता बहुत हो रहा है कोई काम के नहीं, ये सब गार्बेज है, ये सब जंक। वहां पे 65 साल का एक बुढ़ा मिला मुझे, उसके साथ सिक्योरिटी का लड़ाई हो रहा है, किस लिए बताइए, एक सेलफोन के ऊपर। वो सिक्योरिटी बोलते सेलफोन जमा कीजिए, वो बोलते नहीं नहीं मैं सेलफोन जमा नहीं करूंगा। इतने दूर से आए लाइन में घिसटा धूप में मन जला, अब दरवाजा में जाके बोलता सेलफोन नहीं दूंगा, और जब तक सेलफोन नहीं देंगे अंदर नहीं जाने देंगे। बोलते मैं सेलफोन नहीं देता, बोलते क्यों, बोलते नहीं सेलफोन दोगे चेंज हो जाएगा, हाँ फिर मेरे को दूसरा और खो जाएंगे, मैं नहीं देता। फिर बोलता है अगर मेरा बहुत फोन कॉल आता है कौन आंसर करेगा, तो मैं उधर ही खड़ा था, मुझे बड़ा हंसी आया, मैंने कहा उसको बोला, मैंने कहा प्रभु ऐसा है आपका कॉल आएगा कौन आंसर करेगा, ऊपर का कॉल आएगा तो कौन आंसर करेगा, मैंने एग्जैक्टली उसको बोला, अगर ऊपर का कॉल आ गया कालचक्र का कॉल आ गया तो उस टाइम वो कौन आंसर करेगा। तो मेरा मुंह तब देख के बोलता है नहीं नहीं मैं देखो, फिर आदमी गया ही नहीं अंदर, वो सेलफोन को रखा ही नहीं उसने, इतना अटैचमेंट एक छोटी सी सेलफोन के लिए। तो हम सब चलो ऐसे जनता की क्या जरूरत है, क्या महाराज पृथ्वी के समय ऐसे जनता थे क्या? अरे क्या उदार चित्त थे, भगवान के लिए कुछ भी करते थे। आजकल का जनता बाहर के क्या जरूरत है, ये तो पाकिस्तान है, इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, ये बेकार, ये तो इससे तो अच्छा है कि गंगा जमुना में सब भास जाए, फिनिश खत्म हो जाए, कोई जरूरत नहीं ऐसा जनता की। पर बड़ा बेनिडिक्शन है अगर कोई हरे कृष्ण सोसाइटी में आ गए। देखो प्रभुपाद जी क्या क्या, मैं क्यूबा में गया, क्यूबा आप विचार नहीं करो, क्यूबा कम्युनिस्ट कंट्री है, फेडरल कास्ट्रो का कंट्री है, भारत में कितना शांत हुए, पर सचमुच प्रभुपाद जी तो शांत, हम प्रभुपाद को ना यहां पे बम्बई में बैठ के मंदिर में बैठ में विचार नहीं कर सकते, प्रभुपाद क्या चीज है, कैसे शांत है, उनका कार्यकलाप क्या, जैसे भगवान विष्णु और कृष्ण की एक्टिविटीज जो है, हाँ ब्रह्मा शिवा सारी देवता इकट्ठे मिलकर भी खोज नहीं कर पाए, इसी प्रकार मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभुपाद की एक्टिविटी सारा संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, अगर रिसर्च करे नहीं मिलेंगे, ऐसे है प्रभुपाद। अब बताइए हम गए कहां, क्यूबा। अब ये हरे कृष्ण महामंत्र एक जमाने में क्या था, कहा तो मायापुर और अद्वैत आचार्य का घर में कीर्तन होता था, आप देखिए विचार कीजिए 500 साल पहले वो भी तीन चार भक्त चैतन्य महाप्रभु एकांत में कीर्तन करते थे, और वो कीर्तन धीरे धीरे उन्होंने बंगाल में और उड़ीसा में किया। और उसी कीर्तन देखिए प्रभुपाद जी कहां पहुंचा है, आप विचार कर सकते हो इस बात को। क्यूबा जैसे कंट्री, मैं ऐसे एक जगह में गया जहां पे पहाड़ी पहाड़ है, जाने की रास्ता भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, बहुत गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। वहां पर भी तीन चार फैमिली है अपने घर में कीर्तन करता है। और जब मैं देखा मेरे को आंसू आ गया। तो क्यों आया कि प्रभुपाद हमारा लिए क्या कष्ट उठाए। एक्चुअली हम लोग इसको अनुभव नहीं करते, सचमुच नहीं करते। ये जो हम लोग आजकल इतना सुविधाएं है घूमने की, प्रसाद पाने की, अच्छा कपड़ा पहनने की, हाँ ये जो सुविधा है। और प्रभुपाद एक व्यक्ति के लिए नहीं किए, प्रभुपाद अब देखिए मैं क्या बोलूं प्रभुपाद के लिए। अरे वृंदावन तो वृंदावन जो है, दिल्ली वाला खुद नहीं जानता था वृंदावन कौन है। मेरे को खुद मालूम है, मैं 1978 में पहले बार मैं वृंदावन गया था। क्या खुशबू आते थे सचमुच, वो धरती का खुशबू डिफरेंट है। जब प्रभुपाद वहां पे ये कृष्णा वल्लभ मंदिर किए, अब देखो वही प्रभुपाद वही वृंदावन में भटक रहा था, भटक रहे थे, किसी को मालूम है। वो सोचता अरे चलो इससे बाबा तो बहुत है, हमारे वृंदावन में बाबा का कोई कमी है क्या। हाँ, पर जब प्रभुपाद वहां पे बनाया, आप देखिए वो वृंदावन में आपको मकान खरीदने के लिए मुंबई के बराबर चल रहा है, कोई बात हो सकता है ऐसा। इवन मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट प्रभुपाद हैड डन नोबडी एवर इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड एवर डन बिफोर इन इंडिया। ये प्रभुपाद का दान, इवन मेटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू। आप आध्यात्मिक तो छोड़ ही दो, कितने लोग उन्होंने जीवन का उद्धार कर दिया। तो कलीजिग में जो व्यक्ति ये संस्था के संस्पर्श में नहीं आएंगे और ये नाम जग का आधार पर नहीं आएंगे, तो ऐसा पॉपुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, गार्बेज है, कचरा है। प्रभुपाद बोलते हैं देर ऑल डेड बॉडी हबल्स एंड गोस्ट हैंगिंग अराउंड। तो मुंबई में करोड़ों लोग घूम रहे हैं, धक्का से अंदर धक्का से बाहर, गोस्ट ही है, कुछ है ही नहीं, एक गोस्ट है, भूत प्रेत है। तो इस भूत प्रेत को संभालने के लिए हमको यज्ञ करना चाहिए, जैसे ये हावीर धन उनके बच्चे बड़ी सत किए हैं। उन जमाने का यज्ञ जो क्या था, अभी यज्ञ का थोड़ा परिवर्तन हुआ, कलीजी के नाम यज्ञ करना चाहिए। जब तक हम ये नाम यज्ञ करेंगे नहीं, तब तक ये हबल गोस्ट घूमते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है पॉपुलेशन करने के। पहले जमाने में पॉपुलेशन जानबूझकर करते थे हम लोगों को, करो करो, अभी पॉपुलेशन करने क्या जरूरत है, सब गार्बेज है, सब ही गार्बेज है। तो इसलिए ये हमारे हरे कृष्ण संस्था का ये हमारा कर्तव्य है। प्रभुपाद इतना बढ़िया एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना में तो संग दिए हैं, जिसके आधार पर हम पूरे संसार में यज्ञ का साधन कर सकते हैं, जिसमें कोई कॉस्ट है ही नहीं। बताओ क्या कॉस्ट है, किसी को भी कहने की जरूरत नहीं, भाई आप घी ले आइए, भाई लकड़ी ले आइए, हाँ ये सामग्री ले, कोई जरूरत नहीं। खोल करताल लीजिए, खोल करताल भी नहीं, हाथ तो है ना, चलो हरि नाम कीजिए। हाँ ये है, अगर हम ऐसे हरि नाम जग में प्रभुपाद की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से करेंगे, तो ये जो पॉपुलेशन है ये सही पॉपुलेशन होगा, नहीं तो हम भूत प्रेत के बीच में घूम रहे हैं और काल चक्र हमारे सर पे बैठे हुए हैं। तो ये काल चक्र के बचने के लिए हमें हरिनाम यज्ञ करना चाहिए। हाँ हम लोग तो राजा तो है ही नहीं, आजकल का राजा लोग तो चोरी चारों में लग गए हैं, जिनको करना चाहिए था वो तो यज्ञ करता नहीं है, वो यज्ञ का उल्टा काम करता है। देखो भारत ऐसे पुण्य भूमि में गाय माता का हत्या होता है, बताओ। वो क्यूबा में एक रूल है, वहां पे गाय हत्या नहीं होता, वहां पे काउ किलिंग इज फॉरबिडन। अगर किसी को पकड़ा गया गाय का हत्या किया, उसको $20,000 जुर्माना होता है और 10 साल का सजा होता है। कम्युनिस्ट कंट्री है, बताओ ऐसा रूल बना दिया गया। ऑफकोर्स उनके रूल का और कुछ कारण है, मैं उतना तुक नहीं जाता, एटलीस्ट इट्स गुड दे आर नॉट किलिंग द काउस। वो काउ मीट अमेरिका तो दूसरा कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, पर अपना कंट्री में गोहत्या नहीं होता हुँ? और अपने भारत में है जहां पे भगवान कृष्ण की धरती है गाय होता होता है, बताओ ऐसे ऐसे राजा यहां बैठा है, इस देश का क्या कल्याण है? यहां तो साला यहां तो मर दो कौम फिर जाए समझ जाए कोई बड़ी फर्क नहीं। मैं तो यही कहूंगा जब हरिनाम ही नहीं है कि नहीं, कोई हरिनाम नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, तो ऐसा देश का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। तो खाली आवश्यकता है भगवान जो भक्त है ये हरे कृष्ण मोमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मुंबई में हैं, जोश से जाए कीर्तन कीजिए सुनाइए। ये यज्ञ जब तक नहीं होगा तो ये गोष्ठ लोग आगे एक दिन हमारा हरे कृष्ण मंदिर को भी सत्यनाश कर, अब कर रहे हैं ना, इधर बम फट रहा है उधर बम फट रहा है, और इन लोगों का कोई परवाह नहीं है। जो गोष्ठ लोग होता है हवल्स लोग होता है उनके बच्चे एक मर जाते कोई बात नहीं, राक्षस लोग एक मर जाता है 10 पैदा हो जाता है कि नहीं? ऐसे ही हो रहा है, इनके अंदर कोई ज्ञान ही नहीं है कि हमको कैसे रहना चाहिए, संसार का सृष्टि कैसे करना चाहिए। ऐसे राजा भी नहीं है, ऐसे प्रजा भी नहीं है, हाँ सभी अंधा चल रहा है। तो प्रभुपाद जी आए, उनकी बड़ा कृपा रहे, उनके संवर्ध्य आकर हम लोग का जीवन बड़ा धन्य हुए, जबकि हमारा हम लोग ऐसा कैटेगरीज के नहीं है उनके स्थान पर आने के लिए, उनकी कृपा से हम लोग आ गए। ये प्रभुपाद का बड़ा कृपा है, हम लोग भी गोष्ट है, हम लोग भी हवल से, कितने प्रकार जानवर को प्रभुपाद ने एक जगह में पानी पिलावा दिया। ये हरे कृष्ण मोमेंट में है सब जानवर ही जानवर भरे हुए, डिफरेंट प्रदेश के प्रांत के जानवर है, पर प्रभुपाद जी ऐसे कृपा क्या, जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड में सब जानवर को इकट्ठा पानी पिला दिए, नाचा दिए, ऐसा कर दिए, उनकी इतना शक्ति है। तो आइए हम लोग सभी इस यज्ञ की आधार पर हम लोग आगे बढ़े, नहीं तो ये जो है गोस्ट भूत प्रेत के बीच में रहकर हम लोग को भी बहुत तकलीफ होगा, कि भूत लोग प्रेत लोग शांति से किसी को भी रहने नहीं देंगे, उनका धर्म ही ऐसा है कुछ ना कुछ अटंग पटंग करने की। तो ये हरिनाम यज्ञ का बड़ा महत्व है, जो साधु संत लोग ऋषि लोग योगी लोग इस शास्त्र में भागवतम में बताते हैं वो हमें करना चाहिए। आप लोग को कोई प्रश्न है या कमेंट्स है? लीजिए प्रश्न जरूर कीजिए। अगर कोई प्रश्न कोई कमेंट्स महाराज दो कोई कमेंट्स। हाँ जी, अच्छा कीर्तन करते हैं हरिनाम के ऊपर। देखिए हरिनाम का क्या प्रभाव है, तो ये हरिनाम को सुनाने के लिए हाँ स्वयं बलदेव कोई मृदंग बजाने वाले बलराम आए थे, चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु आए थे, उसके ऊपर बहुत बढ़िया भजन है।
अक्रुद्ध परमानंद नित्यानंद राय अभिमाने सुन्द नीताय नगरे बेराय नगरे बेराय गो नगरे बेराय गो।
कलिजुग में इतना बड़ा बेनिडिक्शन है जो बलदेव बलराम बड़ा ताकत बहुत उनका गुस्से थे, बहुत हमेशा गुस्सा में रहता था कोई गलत काम करने के लिए, जो व्यक्ति कोई गलत काम करेगा उनको इमीडिएटली पनिशमेंट देता था। वही बलराम कलिजुग में नित्यानंद प्रभु के रूप से आया और कितना प्रेम भाव से, देखिए इस गाना का अंदर क्या बोलते हैं।
अक्रुद्ध परमानंद नित्यानंद राय अभिमाने सुन्न नीताय नगरे बेराय अक्रुद्ध परमानंद नित्यानंद राय अभिमाने सुन्न नीताय नगरे बेराय नगरे बेराई गो অভিমানে শূন্য নিতাই নগরে বেড়াই গো।
বল রা কি উনকা কই অভিমান নেই হ্যাঁ, ও বেগার কই অভিমান নেই, কই গুসা নেই, বড় প্রেম ভাবসে নগর মে যা রা হ্যাঁ। ক্যা বলতে
নগরে বেড়াই গো, অভিমানে শূন্য নিতাই নগরে বেড়াই গো। যারে দেখে তারে কহে দন্ত্রে দিন ধরি, যারে দেখে তারে কহে দন্ত্রে তৃণ ধরি, আমার কি নিয়াল হো ভজগর হরি, ভজগর হরি গো, ভজগর হরি গো, আমার কি নিয়াল হো ভজগর হরি গো।
বলতে কি সবকে চরণ মে যা রে হাত হাত জুড় করকে কে রে কি হাম আপকে দাস হ্যাঁ, কিনিয়াল হো মতলব মে আপসে বিক গিয়া হো আপকা দাস হো মে, মগর আপ কৃপা করকে একবার কহিয়ে ভজ ঘোর হরি গো। কিন্তু কলি যুগ মে আপ কৃষ্ণ ভক্ত হোঙ্গে, পর অগর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু উপর আপনার প্রেম প্রীতি নেই রাহা তো কৃষ্ণ ভক্তি কলি যুগ মে পানে কলে থোড়া সে বিলম্ব হো যায়গা। ইয়ে সত্য বাত কি ভগবান স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ মে আকর কৃষ্ণ সাধনা কো সমঝা রে, ইসলে চৈতন্য মহাপ্রভু কো আপ জানিয়ে, ইসলে নিত্যানন্দ বলতে হ্যাঁ
ভজ গোর হরি গো, আমার কি নিয়াল হো ভজ গোর হরি গো, যারে দেখে তাহে কহে দন্ত্রে তৃণ ধরি, আমার কি নিয়াল হো ভজ গোর হরি গো, এত বলি নিত্যানন্দ ভুলে গড়ি যায়।
বলো
এত করি নিত্যানন্দ ভুলে গড়ি যায়, আমার কি নিয়াল হো, এত বলি নিত্যানন্দ ভুলে গড়ি যায়, সোনার পর্বত যেন ধোলাতে লোটায়, ধোলাতে লোটায় গো গড়া গড়ি যায় গো, এত বলি নিত্যানন্দ ধোলাতে লোটায় গো,
তো নিত্যানন্দ মহাপ্রভু ইহাঁ পে বর্ণনা কিয়ে যা রে জেসে কই শুনে কি হীরে রহত জহরত কি কই পর্বত হো আর ও পর্বত আকর অগর ধুল মে লটক রা ইসকা মতলব উসকা মূল্য কম নেই হো জাতে। আজ কই প্রাইম মিনিস্টার জো হ্যায় আপনে ইন্ডিয়া কা অগর ইহাঁ আতে হ্যায় আর কিসি কা সচ্চরণ মে আকর লুটনা শুরু কর জাতা হ্যায় ইসকা মতলব উসকা মান কই ঘাট জাতা হ্যায় ক্যা, ও প্রাইম মিনিস্টার হ্যায় ভাই, কিসি কো সমঝনা চাহিয়ে কি ভাই প্রাইম মিনিস্টার হ্যায় ফির ভি মেরা চরণ মে আকর লুটক রা হ্যায়। ইসি প্রকার চৈতন্য নিত্যানন্দ প্রভু স্বয়ং ভগবান আকর লোক চরণ মে ছো ছো কে লোটক লটক রে ঠোকর ঠোকর কে বোল রা হ্যায় গড়াগড়ি যা রা কহ রা কি একবার আপ চৈতন্য মহাপ্রভু নাম লিজিয়ে, একবার কীর্তন কিজিয়ে ভগবান কা নাম লিজিয়ে। হ্যাঁ তো আপনি লোচন দাস ঠাকুর ক্যা বলতে
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল, হেন অবতারে যার রথি না জন্মিল, লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল, এলো আর গেল গো। লোচন বলে সেই পাপী এলো আর গেল গো।
লোচন দাস ঠাকুর বল রে কি আগর আপকো এসা অবতার আগর আপকো আপনি সমজ নহি পায়ে তো আপনা কাছে জেসে ইতনা বড় পাপী সংসার মে আ রহে আর যা রহে আ রহে আর যা রহে কুছ কাম কাহি নি রহা। তো ইস কলিযুগ মে হাম লোগ বড় ভাগ্যশালী হ্যায়, দেখো ভগবান স্বয়ং আকে হামারা নোকর বনে হামারা পাঁও ছোয়ে। তো হাম লোগ কো বড় ঘৃণা হোনা চাহিয়ে কি হাম ক্যা কর রহে, হমকো ইয়ে অনুভব হোনা চাহিয়ে। আগর হাম ইয়ে অনুভব নেই করতে ওয়াক মে হামারা জীবন তো বড় কিরে কা মকর কভি হামারা জীবন কা কোই অধিকার নি হ্যায়। জেসে কিরে মকরে হোতে না উনকা কোই অধিকার হোতে কি জব চলো ওয়াহ জাকে বজনম হোঙ্গে। আগর হাম ভক্ত হোনে কা নাতে ইতনা তক হমকো সমঝ মে নেই আয়া তো হামারা কিরে মকরা হোনে কা ভি অধিকার নেই হ্যায়। তো আপ সোচিয়ে কিতনা পুণ্যবান আত্মা হো আপ, হ্যাঁ ইতনি পুণ্যবান আত্মা হোকর আপ হ্যাঁ হরিনাম সংকীর্তন করে জপ করে কৃষ্ণ প্রসাদ পা রে হ্যাঁ। আরে বহুত পুণ্য সে এ মিলতে হো কই সদিও করোড়ো করোড়ো জীবন তক এ সাধন নেই হো সকতা। আর ও চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করকে হ্যাঁ আর প্রভুপাদ জি কে মাধ্যম সে হ্যাঁ হামলোক এ প্রাপ্ত হো রা হ্যায়। আপ লোক বড় ভাগ্যশালী হ্যায়। এ সচমুচ এ যো কলি এ যো অন্তরাষ্ট্রীয় কৃষ্ণ ভাবনামিত সংঘ হ্যায় এ কলিযুগ কে যুগ ধর্ম কা সোসাইটি হ্যায়। এ যুগ ধর্ম সোসাইটি হ্যায়, চাহে ভালে কই সাধু সন্ত লোক কুছ ভি কহে কই ফরক নি পড়তা। প্রভুপাদ জি একই মাত্র ব্যক্তি হ্যায় যে সবকে লিয়ে দরওয়াজা খোল দিয়ে হ্যায়। আজকাল কই সাধু অটং পটং ইন্ডিয়া সে ভারত কে বাহার যাতা হ্যায় প্রচার করতা হ্যায়। হ্যাঁ প্রভুপাদ দরওয়াজা খোল দিয়ে ইসিলিয়ে সব ইনভাইট করতে হ্যায়। পহলে এসা নেই থে, জব সে হরি কৃষ্ণ মুভমেন্ট প্রভুপাদ নে কিয়ে আর প্রচার কিয়ে আব কিতনে লোক যা রহে হ্যায়, মতলব আনি যাই রহে যাই রহে কুছ হো নি রহা। যে প্রভুপাদ করকে গে ও ধো ধো কে খা রহা, এ পদ সত্য হ্যায়। তো হরি কৃষ্ণ মুভমেন্ট কো আপ হাম এসা নেই সোচনা চাহিয়ে কি বস চলো এ চল রহা হ্যায়, এসা নেই হ্যায়। ইহাঁ পে চৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং উনকে প্রভাব উনকে শক্তি ইসমে হ্যায়, ইসি বজা সে এ সোসাইটি চল রহা হ্যায় চলেগা আখরি দিন তক। এ প্রভুপাদ জি কি ইচ্ছা থে আর চৈতন্য মহাপ্রভু এসেই কর দে। নেই তো বিচার করো সংসার মে গুরু বড়া নামি হোতে হ্যায়, সোসাইটি খুলতে আর গুরু মর জানে কে বাদ সোসাইটি চুপ জাতে হ্যায়। আপ বতাই প্রভুপাদ তো চলা গে আমার সোসাইটি চুপ গে ক্যা, কই পরিশানি আতে হ্যায় আয়ে হ্যায় পর কমতি নেই হুয়া, বাড়তে রহে বাড়তে রহে বাড়তে রহে। হালাকি বিদেশো মে আভি মন্দির মে ইতনা ভক্ত নেই মিলতে পর কংগ্রিগেশন ইতনা হ্যায়, জব রথযাত্রা হতা পতা লাগতা হ্যায়। জব টরন্টো মে রথযাত্রা 60,000 আপ বিচার কর সকতে হো, 60,000 লোক আতে হ্যায় টরন্টো রথযাত্রা মে, তব পতা লাগতা কি হরে কৃষ্ণ কিধর বেঠে হুয়া হ্যায়। এসে মন্দির মে যা দশ দশ পাঁচ ভক্ত মিলেঙ্গে সোচেঙ্গে আরে তো মর গিয়া সোসাইটি খারাপ হো গই, নেই নেই জব রথযাত্রা হতা তব দেখনা সব আকে কীর্তন করে না তব পতা লাগতা কি ভক্ত কাহা কাহা হ্যায়। আরে কৃষ্ণ ভক্ত সর্বত্র হ্যায়, কৃষ্ণ কে ভক্ত হ্যাঁ কি কি ভগবান কৃষ্ণ সর্বত্র হ্যায়, উনকে ভক্ত ভি সর্বত্র হ্যায়, কহি পতা লাগতা কহি নি লাগতা পর সময় মে পতা লাগ জাতা হ্যায়। তো ওই হরে কৃষ্ণ সোসাইটি জো হ্যায় ইসমে আম লোক হ্যায়, আম লোক কা বড় ভাগ্য হ্যায় প্রভুপাদ জি এসে সোসাইটি দিয়ে হ্যায়। উন যুগ যুগান্তর প্রভুপাদ কে নাম ভক্ত লোক গায়েঙ্গে, ভগবান ভি গা রহে হ্যায়, এসা বেনিডিকশন উনোনে লেকে আয়ে কলিযুগ মে যজ্ঞ করনে কে লিয়ে। তো এই হরিনাম হি হাম লোক কা যজ্ঞ হ্যায় আর এই যজ্ঞ হি হাম লোক কো করনা চাহিয়ে। আর কোই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ হরি কৃষ্ণ।